देखिए भाई आगे सबक कहते हैं फईदा उजीफ इलल मुजहर الذي هو الاصل روعي جانب لفظه الذي هو الاصل واعرب بالحركات التي هي الاصل لكن تكون حركاته تقديريه لان اخره الف تسقط بالتقاء الساكنين نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. गुज़श्ता सबक में अस्माए सित्ता मुकब्बरा के बारे में हमने पढ़ा और इसी तरह तस्निया किला और इस्नानी के एराब के बारे में पढ़ा. साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ये जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा हैं इनको एराब बिल हर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि तस्निया और जमा को एराब बिल हर्फ दिया गया था तो कुछ हरूफ को भी एराब बिल हर्फ दे दिया गया ताकि तस्निया और जमा और मुफरदों के दरमियान जो है वहशत और मुनाफरत तामा ना हो जाए भाई, तो इनमें कुछ मुनासिबत पैदा हो जाए. फिर छह इस्मों को मुंतखब किया गया एराब बिल हर्फ के लिए. वजह इसकी ये कि तस्निया और जमा की एराब के एतबार से कुल छह हालतें बनती हैं, रफा, नसब और जर. तस्निया में भी तीन और जमा में भी तीन, तो कुल छह हालतें हो गई तो हर हालत के मुकाबले में एक एक इस्म को एराब दे दिया गया. और फिर यह भी बतलाया था कि इन्हीं छह का इंतखाब क्यों किया तो उसकी दो वजह जिक्र की. एक तो यह कि इनकी तस्निया और जमा के साथ मुशाबहत है क्योंकि जैसे तस्निया और जमा तअद्दुद पर दलालत करते हैं ये जो है ये अस्माए सित्ता भी तअद्दुद की खबर देते हैं भाई, तअद्दुद की खबर देते हैं. जैसे अखुन ये बतलाता है कोई और अख है जिसका ये भाई है. अबुन ये खबर देता है बेटा या बेटी है जिसकी वजह से इसको अब कहा जा रहा है. इसी तरह हम कहा गया तो हम ने औरत की खबर दी कि किसी औरत का ये हम है. और इसी तरह फम और हन जो है इन्होंने साहिब फम और साहिब हन की खबर दी भाई. और जू माल ने आगे मुजाफिले यानी मा यो साहिबहू की खबर दी भाई. किसकी? जू का माना साहिब तो इसने मा यो साहिबहू की खबर दी. तो ये सब जो है तअद्दुद की खबर देते हैं तो इनकी मुशाबहत है. और नीज इस वजह से इनको एराब बिल हर्फ दिया गया इन्हीं छह को क्योंकि इनके आखिर में ऐसे हर्फ मौजूद थे जो एराब बनने की सलाहियत रखते थे. जिस वक्त इनको एराब दिया जाता है अरबों से सुनने के एतबार से, हमने अरबों से इसी तरह सुना है कि एराब के मौके में इनके साथ वाव अलिफ और या पढ़ते हैं और वाव अलिफ और या ये हुरूफ़े मद्दा हैं, ये एराब बनने की सलाहियत रखते हैं. जबकि इनके अलावा बाकी जो अस्मा है महजूफतुल आजाज उनमें हमने अरबों से नहीं सुना कभी कि वो जो हर्फ हजफ हुए हैं वो वापस आ जाएं, तो उनके आखिर में ऐसे हुरूफ नहीं थे जो एराब बनने की सलाहियत रखते भाई. उसके बाद तस्निया और उसके मुलहकात का एराब आया था कि तस्निया किला जब वो मुजाफ हो जमीर की तरफ और इस्नानी वगैरह इनका रफा अलिफ के साथ आएगा नसब और जर या के साथ. और किला और इस्नानी इनको तस्निया नहीं कहा बल्कि मुलहक भी तस्निया कहा कि तस्निया के साथ मुलहक हैं. वजह यह मैंने आपको बतलाया था तस्निया उसको कहते हैं कि जिसका कोई मुफरद हो और उस मुफरद के आखिर में अलिफ नून मिलाकर फिर उससे तस्निया बनाया जाए. जब तो किला इसके आखिर में तो अलिफ नून ही नहीं है और इस्नातानी उसके आखिर में बेशक अलिफ नून है लेकिन उसका मुफरद इस्तेमाल नहीं होता तो ये इस्तेलाही तस्निया नहीं है तो ये मुलहक भी तस्निया हो गए. और फिर यह भी बताया कि मातिन ने किला को जिक्र किया हालांकि एक किलता भी है उसको भी जिक्र करना चाहिए था तो बतलाया कि असल किला है मुजक्कर है तो जब असल को जिक्र कर दिया तो फरा का जिक्र भी आ गया तो फरा भी जिमनन आ गई भाई. उसके बाद साहिब काफिया ने किला के साथ कैद लगाई थी कि किला जब वो मुजाफ हो जमीर की तरफ, किला जब वो, तो ये कैद क्यों लगाई? मैंने आपको बतलाया था कि किला के इस्तेमाल के दो तरीके हैं, या ये जमीर की तरफ मुजाफ होता है या फिर ये इसमें जाहिर की तरफ जो मुआर्रफ बिल्लाम हो उसकी तरफ मुजाफ होता है. तो जब यह जमीर की तरह मुजाफ हो तो फिर उस वक्त इसका एराब अलिफ और या के साथ आता है, और जब यह इसमें जाहिर मुआर्रफ बिल्लाम की तरह मुजाफ हो तो फिर इसका एराब बिल हरकत होता है और तीनों हालतों में तकदीरी होता है। जानी किलर रजुलाइनी, रायतो किलर रजुलाइनी, मरर तो भी किलर रजुलाइनी, ये अलिफ उसी तरह रहता है, बदलता नहीं भाई। और अलिफ है आखिर में, और अलिफ पर तो रफा नसब जर नहीं आ सकता, तो फिर एराब तकदीरी होगा। उसके बाद ये जिक्र कर रहे थे कि ये जो मातिन ने कैद लगाई कि ये किला जब मुजाफ हो जमीर की तरफ उस वक्त इसको एराब बिल हर्फ देते हैं, यानी अलिफ और या वाला, इसकी क्या वजह है? तो नुक्ता बयान फरमा रहे थे साहिब जामी भाई, और फरमाया कि देखो ये जो किला है इसमें दो हालतें हैं। लफ्जों के एतबार से यह मुफरद है क्योंकि अलिफ नून आखिर में नहीं है, और माना के एतबार से यह तस्निया है, दो पर दलालत करता है। तो इसका जो लफ्ज है वह तकाजा करता है एराब बिल हरकात का, और इसका माना तकाजा करता है एराब बिल हुरूफ का। तो हमने दोनों की रियायत रखी भाई, दोनों की रियायत रखी। तो जब यह इसमें जाहिर की तरह मुजाफ होता है तो उसको एराब बिल हरकत दिए। वजह क्या? मैं वजह जिक्र कर रहा था, क्योंकि इस एक है इसमें जाहिर, एक है जमीर। मैंने आपको बतलाया कि इसमें जाहिर असल है और जमीर फरा। वजह यह कि इसमें जाहिर अपने माना पर खुद दलालत करता है, यह मकनी अनहू का मोहताज नहीं, जबकि जमीर जो होती है वह मकनी अनहू की मोहताज। मकनी अनहू वो चीज जिससे किनाया किया गया, मकनीयुन अनहू वो चीज जिससे किनाया किया गया। तो किनाया किसी चीज से किया जाएगा ना, तो वो चीज भी चाहिए भाई, उसके बगैर तो किनाया नहीं हो सकता। मैंने आपको बतलाया था कि किनाया कहते हैं मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा करना, यानी माने गैर मौजू लहू का इरादा करना। और मजाज और किनाया में फर्क भी बतलाया था कि मजाज में भी माने गैर मौजू लहू का इरादा होता है और किनाये में भी माने गैर मौजू लहू का इरादा होता है, लेकिन फर्क यह कि मजाज के अंदर माने हकीकी का उसी जगह पर इरादा नहीं हो सकता, जबकि किनाये के अंदर माने हकीकी का इरादा भी वहां पर दुरुस्त बनता है। तो किनाया किसे कहते हैं? मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा करना, यानी एक चीज बोलकर दूसरे माना का इरादा करना। जमीर में भी इसी तरह है, मसलन मैंने कहा जा अनी जैदुन, और दूसरी दफा आप आगे मैं क्या कहता हूं? वह हुआ सदीकी। अब इस हुआ से कौन मुराद है? जैद मुराद है। तो एक इसम बोलकर दूसरे इसम का इरादा किया, इसको कहते हैं किनाया, किनाया कहते हैं। तो यह जमीर मोहताज है किसकी? मकनी अनहू, किससे किनाया किया है भाई? जैद चाहिए या नहीं? जैद के बगैर हुआ का माना तो समझ में नहीं आएगा भाई। तो जमीर मोहताज हुई मकनी अनहू की, जबकि इसमें जाहिर मकनी अनहू का मोहताज नहीं। तो मालूम हुआ इसमें जाहिर असल है और जमीर फरा है। बात समझ में आ गई? अब इधर देखिए, इसमें जाहिर असल है तो जब किला की इजाफत करते हैं इसमें जाहिर की तरफ तो फिर कहते हैं हमने लफ्जों की रियायत रखी, क्योंकि लफ्ज असल है माना फरा है। तवज्जो है, लफ्ज असल है माना फरा। मैं लफ्ज बोलूंगा तो माना आपको समझ में आएगा, अगर मैं लफ्ज नहीं बोलूंगा तो माना समझ में आ सकता है आपको? जी नहीं, जब तक लफ्ज मैं बोलूंगा नहीं माना आपको समझ में नहीं आएगा। यह मैं तकरीर कर रहा हूं तो आप समझते जा रहे हैं, अगर मैं तकरीर ना करूं खामोशी से बैठकर सिर्फ मानी सोचता रहूं तो आपको कुछ बात समझ में आएगी नहीं। तो लफ्ज हुआ असल और माना हुआ फरा। मालूम हुआ इसमें जाहिर असल है और जमीर फरा। इसी तरह लफ्ज असल है और माना फरा। इसी तरह एराब बिल हरकत असल है और एराब बिल हर्फ फरा। तवज्जो है, फिर दोहराओ, इसमें जाहिर असल और जमीर फरा। इसी तरह लफ्ज असल और माना फरा, और एराब बिल हरकत असल और एराब बिल हर्फ फरा है। इसीलिए इसीलिए तो जमा तस्निया और जमा को एराब बिल हर्फ दिया गया। तस्निया और जमा को एराब बिल हर्फ दिया गया, क्योंकि तस्निया और जमा किससे बनते हैं? मुफरद से। तो मुफरद हुआ असल और तस्निया जमा हुए फरा, और मुफरद को कौन सा एराब दिया है? एराब बिल हरकत। तो फरा को कौन सा दिया है? एराब बिल हर्फ दिया है। तो एराब बिल हरकत असल है और एराब बिल हर्फ फरा है। तो लिहाजा जब किला की इजाफत हुई मुआर्रफ बिल्लाम की तरफ, यानी इसमें जाहिर की तरफ, तो इसमें जाहिर क्या है, असल है या फरा है? असल है। एक सूरत यह है किला की इजाफत जमीर की तरफ हो, एक सूरत यह है कि इसमें जाहिर मुआरब इल्लाम की तरफ हो। तो किला की इजाफत जब किसकी तरफ हो, इसमें जाहिर की तरफ, और इसमें जाहिर क्या है, असल है। जब इसमें जाहिर असल है तो हमने भी यहां पर किला की असल का लिहाज रखा, यानी लफ्ज का, किला के एक किला का लफ्ज है एक माना। जब किला की इजाफत किसकी तरफ हुई, मुआरब इल्लाम की तरफ, यानी इसमें जाहिर की तरफ, तो इसमें जाहिर असल है। तो जब इसमें असल की तरफ इजाफत हुई तो हमने भी किला के अंदर असल की रियायत रखी। और किला एक है लफ्ज, एक है माना, असल क्या, लफ्ज, तो हमने किला के लफ्ज की रियायत रखी क्योंकि वो असल है, और इसको एराबिल हरकत दिया क्योंकि वो भी असल है। तवज्जो है, फिर दोहराओ, जब किला की इजाफत हुई किसकी तरफ, मुअर्रब बिल्लाम की तरफ, और मुअर्रब बिल्लाम तो क्या है, असल, तो हमने भी इस किला के अंदर असल की रियायत रखी, और असल किला में क्या है, लफ्ज है, लफ्ज की रियायत रखी, और इसको हमने असल वाला एराब दिया, और वो कौन सा है, एराबेल हरकत है। और जब किला की इजाफत जमीर की तरफ हुई, और जमीर तो क्या है, फरा, तो हमने भी किला में माना की रियायत रखी, और माना तो क्या है, फरा, और इसको एराबिल हर्फ दिया, और वो भी क्या है, फरा। बात समझ में आई? नहीं तवज्जो। तीन चीजें हैं असल और तीन चीजें हैं फरा। इसमें जाहिर है असल और जमीर है फरा, और इसी तरह लफ्ज है असल और माना है फरा, और एराबिल हरकत है असल और एराबिल हर्फ है फरा। तो जब किला की इजाफत हुई इसमें जाहिर की तरफ, तो किसकी तरफ इजाफत हो रही है, असल की तरफ, तो किसका लिहाज रखो, किला के लफ्ज का, क्योंकि लफ्ज भी क्या है, असल, और लफ्ज के एतबार से तो किला क्या है, मुफरद। जब मुफरद है तो कौन सा एराब आना चाहिए, एराबिल हरकत आना चाहिए, तो हमने इसको एराबिल हरकत दिया। तो किलर रजुलैनी, तीनों हालतों में एराबिल हरकत है, अलबत्ता एराब तकदीरी है क्योंकि किला के आखिर में अलिफ मौजूद है। क्या, कौन सा एराब दिया, बिल हरक। और जब यह जमीर की तरह मुजाफ हुआ तो जमीर क्या है, फरा, और जब फरा है तो हमने किला में भी फरा की रियायत की, यानी उसके माना की, किला के माना की रियायत की, क्योंकि माना भी क्या है, फरा, और इसको एराब भी फरा वाला दिया, कौन सा, एराबिल हुरूफ दे दिया, इसीलिए किला हुमा और किले ही मा। बात समझ में आ गई? देखिए किताब पर कहते हैं, फईदा उजीफ इलल मुजहरिल्लदी हुवल असलू, जब किला की इजाफत की गई उस इसमें जाहिर की तरफ जो असल है, इसमें जाहिर क्या है, असल है, रुइया जानिबु लफ्जी ही, तो फिर किला के लफ्ज की जानिब की रियायत की गई, अल्लजी हुवल असलू, वो लफ्ज जो के असल है, वह उरिबा बिल हरकात, और इसको एराब बिल हरकात दिया गया, अल्लती ही अल असलू, जो क्या है, एराबिल हरकत भी असल है, लेकिन तकून हरकत हो तकदीरियतन, लेकिन इसकी ये जो हरकत हैं ये तकदीरी हैं भाई, इसकी ये हरकत तकदीरी हैं, क्यों, लिअन्न आखिरहु अलिफुन, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ है, तस्कुतु बिल्तिका साकिनैनी, और वो अलिफ गिर गया किसकी वजह से, इल्तिका साकिनैन की वजह से। देखो किला, और आगे आया अर्रजुलैन, अर्रजुलैन, अर्रजुलैन के शुरू में हमजा वसली वो गिर गया, और लाम जो है उसको रा करके रा में क्या कर दिया गया, इदगाम कर दिया गया, तो अब पहले रा भी साकिन और किला के आखिर में अलिफ भी साकिन, तो अलिफ और रा दो साकिन जमा हुए, इज्तिमाई साकिनैन आया, और इज्तिमाई साकिनैन में दो ही सूरतें हैं, अगर अव्वल हरफे मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, वरना उसको कसरा वाली हरकत दे देते हैं, तो किला अलिफ भी साकिन रा भी साकिन, तो इज्तिमाई साकिनैन आया, इनमें से अव्वल कौन, अलिफ, और वो क्या है, हरफे मद्दा, तो उसको गिरा दिया, तो क्या बन गया, किलर रजुलैनी, अब अलिफ नहीं पढ़ना, किलर रजुलैनी, तरीका समझ में आ गया। तो कहते हैं लिअन्न आखिरहु अलिफुन तस्कुतु बिल्तिका इस साकिनैनी, क्योंकि इसके आखिर में ऐसा अलिफ है, देखो अलिफुन नकेरा आया और इसके बाद फेल आया, तो ये उसके लिए क्या बनेगा, सिफत, और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। तो कहते हैं लिअन्न आखिरहु अलिफुन तस्कुतु बिल्तिका इस साकिनैनी, इसलिए क्योंकि इस किला के आखिर में ऐसा अलिफ है जो गिर जाता है इल्तिकाए इल्तिकाए साकिनैन से, यानी इसकी वजह से एराब तकदीरी आया। नहु जा अनी किलर रजुलैनी, देखो तीनों हालतों में किला ही रहेगा, किला ही नहीं बनेगा। जानी किलर रजुलाइनी वरा आए तो किलर रजुलाइनी वमरार तो भी किलर रजुलाइनी। देखो तीनों हालतों में एराब तकदीरी है। जानी किलर रजुलाइनी ये मरफू है तकदीरन, जम्मा तकदीरी है यहां पर। और रए तो किलर रजुलाइनी यहां फतहा तकदीरी है तो ये मनसूब है तकदीरन। और मरर तो भी किलर रजुलाइनी जर किसके साथ आता है कसरा के साथ तो यहां कसरा तकदीरी है। तलफुज में जम्मा फतहा कसरा आए नहीं तो एराब तकदीरी है भाई। सबको बात समझ में आती है। आगे देखिए कहते हैं वईदा उजीफ इलल मुजमरिल लदी हुवल फरउ और जब इस किला की इजाफत की गई उस जमीर की तरफ अल्लदी हुवल फरउ जो के फरा है रुईया जानिब मानाहु लदी हुवल फरउ तो रियायत की गई इस किला के माना की जानिब की अल्लदी हुवल फरउ वो माना जो फरा है वह उरिबा बिल हरूफ ही और इसको एराब बिल हरूफ दिया गया अल्लती ही अल फरउ वो एराब बिल हरूफ जो फरा है भाई। नहु जा अनी किला हुमा व रए तु किलई ही मा व मरर तु भी किलई ही मा। बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरह। आगे देखिए भाई कहते हैं फलिदालिका कैयद कौन एराबहू बिल हरूफ ही बि कौन ही मुजाफन इला मुजमरिन इसी वजह से साहिबे काफिया ने किला को मुकैद किया था। तो मालूम हुआ ये जो तस्निया का एराब किसके साथ आता है अलिफ और या, किला में भी एराब अलिफ और या के साथ आएगा लेकिन मुतलकन या जब वो जमीर की तरह मुजाफ हो, जब जमीर की तरह मुजाफ हो तो यही बात जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं फलीजालिका इसी वजह से कैयद कौन एराब ही बिल हरूफी माती ने मुकैद किया इसके एराब बिल हरूफ होने को, इस किला के एराब बिल हरूफ होने को मुकैद किया बी कौन ही मुजाफन इला मुजमरिन इसके मुजाफ इला मुजमर होने के साथ कि ये क्या होना चाहिए मुजाफ इला मुजमीर की तरह मुजाफ होना चाहिए फिर इसका एराब बिल हरूफ आएगा वैसे नहीं आएगा। व इसनानी व कजा इसनातानी व सिंतानी और इसी तरह है इसनानी भी व कजा इसनतानी व सिंतानी और इसी तरह है इसनतानी भी और सिंतानी भी। मैंने बताया इसनानी का माना दो लेकिन यह मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसनतानी और सिंतानी का माना भी दो लेकिन यह मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। एक और कीमती बात याद रखना, याद रखो ये जो इसनानी और इसनतानी है इसके शुरू में जो हमजा है यह हमजा वसल है, यह दर्जे इबारत में गिर जाता है लेकिन यहां नहीं गिरेगा। व इसनतानी यूं पढ़ेंगे, वसनतानी ना पढ़ना भाई, वसनतानी ना पढ़ना। क्या वजह है? वजह मैं बतला चुका हूं पहले ही भाई। क्या वजह? देखो इबारत कैसे पढ़ेंगे, अल मुसन्ना व किला मुजाफन इला मुजमरिन व इसनानी व इसनानी। हमजा को नहीं गिराना। क्यों नहीं गिराना? वजह यह, वजह यह कि यहां ये लफ्ज आलम के दर्जे में है, लफ्ज बोलकर लफ्ज मुराद है। इस नानी का माना तो दो है लेकिन यहां जो भी इसका तर्जमा करेगा इसका तर्जमा दो के साथ नहीं करेगा। फिर सुनो, अल मुसन्ना व किला मुजाफन इला मुजमरिन व इस नानी। जी कैसे तर्जमा करेंगे? अल मुसन्ना तस्निया व किला और किला। देखा किला का तर्जमा हम नहीं कर रहे, मालूम लफ्ज मुराद है, किला से लफ्ज। जब मुजाफन इला मुजमरिन इस हाल में कि ये किला मुजाफो जमीर की तरफ व इसनानी और देखा व इसनानी, देखा आप इसका तर्जमा नहीं कर रहे, दो और दो यूं नहीं कह रहे और इसनानी। तो जब लफ्ज बोलकर लफ्ज का इरादा किया जाए तो वो आलम के दर्जे में होता है, तो ये इसनानी भी क्या है? आलम है। जब ये आलम बन गया तो अब वो हमजा कतई बन गया, वो वसली ना रहा। तो वो जो इबारतों में इसनानी और इसनातानी आता है उसका नाम ही इसनानी और इसनातानी रख दिया तो अब इसमें हमजा नहीं गिरेगा भाई। तो कहते हैं वह इसनानी व कजा इसनातानी व सिंतानी और इसी तरह है इसनातानी और सिंतानी भी, क्योंकि ये मुअन्नस है तो ये फरा है तो जब असल का जिक्र आ गया तो फरा उसके ताबे है, वो भी आ गई भाई। फ इन नहादिल अल्फाज, अब वजह जिक्र करने लगे हैं कि इसनानी और इसनतानी वगैरह को इनको ये तस्निया वाला एराब क्यों दिया, हालांकि ये तो तस्निया नहीं है। कहते हैं वजह यह कि यह तस्निया इस्तेलाही तो नहीं है, क्योंकि इनका मुफरत इस नुन इस्तेमाल नहीं होता, हालांकि तस्निया में तो जरूरी है कि उसका मुफरत बगैर अलिफ नून के भी इस्तेमाल होता हो, तो इनका तो मुफरत इस नुन इस्तेमाल नहीं होता। हां अलबत्ता इनकी सूरत तस्निया जैसी है, जैसे तस्निया के आखिर में अलिफ नून आता है, इनके आखिर में भी क्या है अलिफ नून, नीज इनका माना भी तस्निया वाला है, तस्निया का माना भी होता है दो और इनका माना भी है दो, तो चूंकि इनकी सूरत भी तस्निया जैसी माना भी तस्निया जैसा, इसलिए इनको भी तस्निया वाला एराब दे दिया गया। कहते हैं फ इन नहादिहिल अल्फाज व इन कानत मुफरदतन, क्योंकि ये अल्फाज जो हैं अगरचे मुफरद हैं, कौन से अल्फाज, इसनानी इसनतानी और सिंतानी, ये अल्फाज जो हैं वह इन कानत मुफरदतन अगरचे मुफरद हैं, लाकिन सूरत उहा सूरत तस्नियती, लेकिन इनकी सूरत तस्निया की सूरत है, यानी इनके आखिर में अलिफ नून जुड़ा तो हुआ है, सूरत उस जैसी है, वह माना हमानत तस्नियती, और इनका माना भी तस्निया वाला माना है, क्योंकि इनका माना भी है दो, फउल हिकत बिहा, तो इनको भी तस्निया के साथ मिला दिया गया। आगे देखिए कहते हैं बिल अलिफी, ये तस्निया और किला जब मुजाफ हो जमीर की तरफ और इसनान, इन तीनों का एराब बताने लगे हैं, तो ये तीन किस्मों का एराब बताने लगे हैं, कौन सी तीन किस्में, नंबर एक तस्निया, नंबर दो किला, ना सिर्फ किला नहीं कहना, किला जब वो मुजाफ हो किसकी तरफ जमीर की तरफ, ये कैद साथ जरूर लगानी है, वरना तो आप तफसील आपने पढ़ ली भाई कि हमेशा अलिफिया या के साथ किला का एराब नहीं आता हमेशा, तो तस्निया किला जब वो मुजाफ हो जमीर की तरफ और इसी तरह इसनानी वगैरह, इन सब का एराब किसके साथ आएगा अलिफ और या के साथ, अब वो बताने लगे हैं। कहते हैं बिल अलिफी, इनका एराब अलिफ के साथ होगा, रफ अन हालत रफ रफे की हालत में, वल या और या के साथ आएगा ऐसी या अल मफतूह मा कबलहा, जिसका माकबल मफतूह हो। इधर देखिए तस्निया का एराब कैसे आता है, हालत रफी में अलिफ और नस्वी जरी में या माकबल मफतूह, और हालत नस्वी जरी में या माकबल मफतूह, या माकबल मफतूह, तो वही बयान कर रहे हैं। कहते हैं बिल अलिफ रफअन, इनका इराब अलिफ के साथ आएगा, रफअन हालत रफी रफा की हालत में, वल या और या के साथ आएगा, अल मफतूह माकबलहा ऐसी या जिसका माकबल मफतूह हो, नस्ब व जर्रन हालतन नस्ब वल जर्री नसब और जर की हालत में या के साथ आएगा। भाई वल या ये है मौसूफ और अल मफतूह ये है इसकी सिफत, अल मफतूह ये क्या है इसकी सिफत, और ये सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही है, ये सिफत बिहाली मुतअल्लिक ही है, जुबान से दोहराओ, सिफत बिहाल मुतअल्लिक ही, याद रखो सिफत दो किस्म पर होती है, एक सिफत बिहाली ही है, एक सिफत बिहाल मुतअल्लिक ही है। जैसे मसलन जैदुन कायमुन, जैदुन जैद है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर, ये जो खबर होती है यह भी सिफत ही होती है, जैदुन कायमुन जैद खड़ा है जी, कयाम किसकी सिफत है, जैद की सिफत है, तो ये खबर भी क्या है सिफत ही होती है, तो यहां पर ये कियाम किसके लिए है जैद के लिए, तो इसको कहेंगे सिफत बिहाली ही, यानी ये ऐसी सिफत है जो अपने मौसूफ की हालत बयान कर रही है, तवज्जो है, ये कायमुन खबर किसकी जैद की, और कायम भी कौन है जैद है, तो इसको क्या कहेंगे सिफत बिहाली ही, यानी ऐसी सिफत जो अपने मौसूफ की हालत को बयान करे, बिहाली ही अब बिहाल मौसूफ ही, हा जमीर मौसूफ को राजे, तो ये जैदुन कायमुन, कायमुन किसकी सिफत, कायम कौन है जैद है या कोई और है जैद है, तो ये कायम ऐसी सिफत है जो बिहाली ही है, यानी अपनी मौसूफ की हालत बयान कर रही है, जैद के लिए खबर है और जैद ही की हालत बयान कर रही है, किसी और की हालत बयान नहीं कर रही। दूसरी मिसाल ले लो जैदुन कायमुन अबूहू, ये अबूहू क्या बन रहा है जी, जैदुन कायमुन अबूहू, जैदुन है मुब्तदा, तरकीब करो जैदुन मरफू लफजन मुब्तदा, कायमुन मरफू लफजन सिगा इसमें फाइल, جی آگے ابو ہو آ رہا ہے، اب ہوا ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ابو ہو، ابو مرفو لفظان مضاف، مرفو کیوں؟ یہ فاعل ہے قائمون کے لیے، تو اور ہا ضمیر مجرور محلن مضافل ہے، مضاف مضافل ہے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لیے؟ قائمون کے لیے، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور اس میں جو ابو ہو کے آخر میں ہا ضمیر تھی وہ ربط دے رہی ہے، وہ کس کو راجع ہے؟ زید کو، زید کو، قائمون ابو ہو، یہ شبہ جملہ بنے گا نا سارا، اور شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ ربط چاہیے، تو یہ ابو ہو کی ہا ضمیر ربط دے رہی ہے. زید قائمون ابو ہو، ترجمہ کیجئے، زید کے اس کے ابو کھڑے ہیں. قائمون ابو ہو، قائمون ہوا ہے زید ہے یا ابو ہو ہے؟ ابو ہو قائم ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھو غور کرو ذرا لفظوں پہ، قائمون لفظوں میں خبر کس کی؟ زید کی. یوں یوں کہو، قائمون لفظوں میں صفت کس کی؟ زید کی. اور معنی میں صفت زید کی یا زید کے باپ کی؟ زید کے باپ کی. تو یہ ہے صفت بحال متعلق ہی، صفت بحال یہ لفظوں میں صفت ہو ایک کی، معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی. زید کا باپ زید کا متعلق ہے بھائی، تو صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ صفت بحال ہی کہ لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی میں بھی اسی کی صفت ہو، اور صفت بحال متعلق ہی کہ لفظوں میں صفت ہو ایک کی معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی. توجہ ہے؟ پھر سنو، زید قائمون، قائمون لفظوں میں صفت کس کی؟ زید کی، یعنی خبر ہے، خبر بھی صفت کے درجے میں، تو قائمون لفظوں میں خبر زید کی، لفظوں میں صفت زید کی، تو اور معنی میں بھی صفت کس کی ہے؟ زید کی ہے. قیام کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے. اور زید قائمون ابو ہو، یہ قائمون لفظوں میں صفت کس کی؟ زید کی، لیکن معنی میں صفت زید کی نہیں ہے بلکہ زید کے متعلق کی ہے، اس کے باپ کی. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ دو قسم کی صفتیں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی، یہاں پر دیکھیے کتاب پر، ول یا یہ ہے موصوف، المفتوح یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، ول یا مجرور ہے تو المفتوح یہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور. ادھر دیکھیے، مجھے بتائیے تثنیہ میں رفع کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، اور نصب اور جر یا کے ساتھ، یہ یا مفتوح ہوتی ہے یا اس یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے؟ یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. رجلین یا تو ساکن ہے بھائی، تو یہاں پر بھی دیکھو ول یا کہ ان تینوں کا اعراب جو ہے حالت نسبی جری میں کس کے ساتھ آئے گا؟ ول یا ایسی یا المفتوح کہ مفتوح ہو. کیا چیز مفتوح ہو؟ ما قبلہا ای ما قبل الیائی. یہ نائی فائل ہے المفتوح کا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی. یہ نائی فائل ہے کہ مفتوح ما قبلہا ای ما قبل الیائی، یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے. تو المفتوح لفظوں میں صفت کس کی؟ یا کی. یا موصوف مجرور، المفتوح صفت بھی مجرور، لیکن وہ یا مفتوح ہوتی ہے یا اس کا ما قبل؟ ما قبل. تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ول یا، اور ان کا اعراب جو ہوگا وہ ایسی یا کے ساتھ ہوگا، المفتوح ما قبلہا کے، جس کا ما قبل مفتوح ہوگا، نصبا و جرن، حالت نصبی میں اور حالت جری میں اس ایسی یا آئے گی بھائی. کما سیجی، جیسے کہ عن قریب آ جائے گا، جیسے کہ عن قریب آ جائے گا. ابھی آگے جمع کے اندر جا کر یہ بتلائیں گے کہ ان کو یہ اعراب کیوں دیا گیا، حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور نسبی جری میں یا کے ساتھ کیوں دیا گیا. اب وہ تفصیل آگے جمع مذکر سالم کا جب اعراب ذکر کریں گے تو وہاں ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں کما سیجی، جیسے کہ عن قریب آ جائے گا، جمع المذکر سالم، جمع المذکر سالم، جمع مضاف، المذکر مضاف الیہ، جمع المذکر کیا ترجمہ ہوا؟ مضاف مضاف الیہ ہیں، مذکر کی جمع، جمع المذکر، مذکر کی جمع. اور آگے جو السالم آیا، یہ مذکر کی صفت نہیں ہے، اگر یہ مذکر کی صفت ہوتی تو مذکری وہ تو مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، تو السالمی اس کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ مجرور ہونا چاہیے تھا. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ جمع کی صفت ہے، اور جمع مرفوع ہے، جمع المذکر، تو السالم اس کی صفت بھی کیا آ گئی؟ مرفوع. تو ترجمہ کیا ہوا؟ جمع المذکر سالم، مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو، مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو. تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ جمع سالم نکل گئی جو مؤنس کی ہو. یاد رکھو یہ جو واو نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ جمع آتی ہے مسلمون اور مسلمین، یہ مذکر کی بھی جمع آتی ہے اور بعض اوقات مؤنس کی بھی یہی جمع آتی ہے. مسلمون مذکر ہے، کوئی علامت تانیث جڑی ہوئی ہے؟ مسلمون کا لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی جمع آئی مسلمون اور مسلمین، تو یہ مذکر کی جمع سالم ہے. کس کی؟ مسلمون مذکر تھا، اس کی یہ جمع سالم. اور کبھی یہ مؤنث کی جمع بھی سالم آتی ہے، جیسے سنتن. سنتن سال کو کہتے ہیں، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کس سن میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو سنتن کسے کہتے ہیں؟ سال. اور اس کی جمع عربی میں استعمال ہوتی ہے سینون اور سینینا، حالت رفی میں سینون، نسبی جاری میں سینی. تو یہ سنتن کے آخر میں تو گول تا جڑی ہوئی ہے، تو یہ تو مؤنث ہے یہ لفظ. تو دیکھو مؤنث کی جمع بھی کیا آئی؟ واو نون کے ساتھ آ گئی. اسی طرح الارض ہے، ارض آپ نے پڑھا ہے کہ یہ مؤنث سماعی ہے، کیونکہ اس کی تصغیر نکال لو، تصغیر کیا ہے؟ اریزتن، تو وہاں پر گولتا موجود ہے، معلوم ہوا کہ یہ ارض کا لفظ مؤنث ہے. تو عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اور اس کی جمع الارضون آتی ہے واو نون کے ساتھ، اور حالت نسبی جری میں الارضین. تو دیکھو مسلمون مذکر لفظ تھا، اس کی بھی جمع واو نون کے ساتھ، اور سنتن اور ارزن مؤنث ہیں اور ان کی بھی جمع واو نون کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جمع المذکر سالم، مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو. مذکر کی تو مؤنث کی بھی یہی جمع آتی ہے یا نہیں؟ سنتن اور ارزن کی بھی آتی ہے، وہ تو نکل گئے اس حکم سے. آپ نے تو کیا کہا؟ مذکر کی جمع ہو، یعنی مفرد کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے. مذکر کی جمع سالم، مؤنث کی جمع سالم، وہ تو نکل گئی اس سے. نہیں توجہ، نہیں بات سمجھ میں. انہوں نے کیا کہا؟ مذکر کی جو جمع سالم ہے، معلوم ہوا جو مؤنث کی جمع سالم ہے سنتن اور ارزن کی، وہ تو نکل گئی. بھائی تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ بھائی لفظوں کو نہ دیکھیں، یہ اس کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس جمع کا نام ہے جو واو نون کے ساتھ آئے. جو بھی جمع واو نون کے ساتھ آئے اس کا نام کیا ہے؟ جمع المذکر السالم. چاہے اس کا مفرد مذکر ہو، چاہے اس کا مفرد مؤنث ہو، سب اس میں آ گئے. آپ یہ نہ کہیں صرف مذکر کی جمع آ گئی، مؤنث کی جمع نہیں، بلکہ یہ جمع المذکر السالم سے نحویوں کی اصطلاح میں یہ ہر اس جمع کو کہتے ہیں جو واو نون کے ساتھ آئے، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے مذکر نہ ہو. جیسے جمع المؤنث السالم، وہاں بھی یہی شبہ پڑتا تھا کہ مؤنث کی جمع سالم، تو مسلمتن اس کی جمع بھی کیا آتی ہے؟ مسلماتن. دیکھو مسلمتن مؤنث ہے، لیکن مذکر لفظ لے آؤ، مجرور ان منصوب ان مفتوح، ان کی جمع بھی کیا آتی ہے؟ مجرور ان کے آخر میں تو کوئی علامت تانیث کی نہیں ہے، لیکن اس کی جمع الف تا کے ساتھ آ رہی ہے، مجرورات ان منصوبات ان. تو معلوم ہوا یہ جمع مذکر کی بھی آتی ہے الف تا کے ساتھ اور مؤنث کی بھی. تو جب آپ نے کہا تھا جمع المؤنث السالم، مؤنث کی جمع سالم، تو مذکر تو نکل گئے اس میں سے، وہ بھی حالانکہ الف تا کے ساتھ آتے ہیں. تو وہاں بھی صاحب جامی نے کیا بتلایا تھا؟ کہ اس سے اصطلاحی جمع مؤنث سالم مراد ہے، اور لفظوں پر نہ دیکھو، بس اس کا نام ہی یہ ہے. جو جمع بھی الف تا کے ساتھ آئے اس کا نام ہے جمع المؤنث السالم، اور جو بھی جمع واو نون کے ساتھ آئے اس کا نام ہی کیا ہے؟ جمع المذکر السالم. دیکھیے بھائی کہتے ہیں جمع المذکر السالم والمراد به ما سمی به اصطلاحا، اور مراد اس جمع مذکر سالم سے ما وہ جمع ہے، سمی به جس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جس کا نام جمع مذکر سالم رکھا گیا ہے اصطلاحا، اصطلاح میں یعنی نحویوں کی اصطلاح میں جس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں وہ یہاں مراد ہے. آپ لفظوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں کہ صرف یہ مذکر کی جمع سالم مراد ہے، مؤنث کی نہیں مراد، بلکہ اصطلاحی جمع مذکر سالم مراد ہے، اور وہ عام ہے، چاہے اس کا مفرد مذکر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. तो कहते हैं वल मुराद बिही मासूमिया बिही इस्तिलाहन, और इससे मुराद जो है वो जमा है जिसको जमा मुजक्कर सालिम के नाम के साथ मौसूम किया गया है बएतबार इस्तिलाह के। वह वल जम ओ बिलवावी वन नूनी, और ये वो जमा है जो व और नून के साथ आए, जो भी जमा व और नून के साथ आए वो सब इसमें आ गए। फैद खुलूफी ही नह वो सीनीना व अर्जीना, तो इसके अंदर सीनीना और अर्जीना जैसे जी जमा भी दाखिल हो गई। मिम्मा लम यकुन वाहिद हु मुजक्करन, यानी कि वो जिनका वाहिद मुजक्कर नहीं है, वो जिनका वाहिद मुजक्कर नहीं वो भी इसमें दाखिल हो गए। लाकिन युजमाउ बिल वावी व नूनी, लेकिन उनको जमा किया जाता है व और नून के साथ। इबारत समझ में आई? इसमें सीनीना और अर्जीना भी दाखिल हो गए, यानी कि वो जिनका वाहिद मुजक्कर तो नहीं है लेकिन उनकी जमा किसके साथ आती है? व और नून के साथ। कहते हैं वमा उल हिका बिही वहुआ उलू जी, ये जमा मुजक्कर सालिम भी है और जो इसके साथ मुलहक हैं वो भी इसके अंदर दाखिल हो गए। मुलहक क्या क्या हैं आपको बताएंगे, एक है उलू और एक है इशरूना व अखवातुहा, इशरूना और उसके जो अखवात हैं। मुस्लिमूना, इसका एराब क्या, हालत रफी में वाओ के साथ और नस्बी जरी में या के साथ। इसी तरह उलू है, हालत रफी में उलू कहेंगे, नस्बी जरी में उली कहेंगे। याद रखो ये जो उलू है ना, उलू ये जमा है जू की, मैं पहले बयान कर चुका, जू की जमा है। जू की एक जमा आती है जवूना और एक जमा क्या इस्तेमाल होती है, उलू। तो ये लफ्जों के एतबार से उलू की जमा नहीं है कि उससे जमा बना ली गई, नहीं नहीं, उलू का माना है वाला, जू माल, माल वाला, और उलू का माना है वाले जमा के लिए, उलू मालिन, माल वाले। तो ये माना के एतबार से उसकी जमा है, लफ्जों के एतबार से उसकी जमा नहीं, यानी वो जू जैसे मुफरत के लिए इस्तेमाल होता है, उलू वही माना अदा करता है लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है। और उलू के रस्मुल खत में एक और बात याद रखना भाई, उलू उलू आपकी किताबों में उलू किस तरह लिखा है, अलिफ लाम और वाव है, अलिफ के बाद वाव है कि नहीं, वाव होना चाहिए अलिफ के बाद, यानी हमजा, हमजा के बाद वाव होना चाहिए और फिर लाम वाव। सही रस्मुल खत इसका यह है भाई, वजह यह कि उलू हालत रफी में कैसे कहेंगे, उलू मालिन, माल वाले, और हालत नस्बी जरी में कैसे पढ़ेंगे, उली मालिन। अगर हमजा के बाद वाव नहीं लिखोगे तो हमजा लाम या इस तरह लिखना पड़ेगा, तवज्जो है, तो यह बिल्कुल इला जैसी सूरत बन जाएगी, तो पढ़ने वाले को नहीं पता चलेगा इला मालिन है या उली मालिन है। तो इल्तिबास से बचने के लिए हमजा के बाद किसको लिखते हैं, वाओ, तवज्जो है, और किस हालत में इल्तिबास आ रहा था, हालत नस्बी जरी में, हालत नस्बी जरी में इल्तिबास आता था, जब उसमें वाओ लिखते हैं तो अब हालत रफई में भी वाओ लिखते हैं ताकि हर जगह एक जैसे एक जैसी सूरत बन जाए लफ्ज की। भाई बात समझ में आ गई, देखिए भाई अब किताब पर कहते हैं जमा मुजक्कर सालिम जो है वमा उल हिका बिही, और जो इसके साथ मुलहक है, भाई क्या क्या मुलहक है, कहते हैं वह हुआ उलू, वो उलू है, जम उजू, ये जू की जमा है, ला अन लफ्जी ही, लेकिन जू के लफ्ज से नहीं है, जू के बतलाना ये चाहते हैं कि लफ्जों के एतबार से ये उसकी जमा नहीं है, माना के एतबार से जमा है। जू का माना है वाला और उलू का माना वाले भाई। वईशुरूना व अखवातुहा, और इसी तरह इशुरूना और जो उसके अखवात हैं, अखवात से क्या मुराद, कहते हैं अखवात जो उसके मुशाबे हैं, उसके जो मिसल हैं, यानी सलासूना अरबाऊना खमसूना वगैरह, ये सब मुराद हैं, और इनको अखवात कहा, ये उसके मुशाबे हैं, चूंकि बहनें भी एक दूसरे के मुशाबे होती हैं इसलिए अखवात कहा, और नीज अख नहीं कहा बल्कि अखवात कहा, उख्त की तावील में लिया, यानी इशरूना की तावील कर ली कलीमातुन के एतबार से, यानी इशरूना कलीमा है और कलीमा के आखिर में गोलता है तो यह मुअन्नस है, तो इसलिए उख्तुन से उसको ताबीर किया। तो कहते हैं इशरूना और इसके अखवात जो हैं भाई अखवात से क्या मुराद, कहते हैं आई नजा रूहस सब, जो इसकी सात नजीरें हैं, सात नजीरें जो इसके सात मिसल हैं, कौन कौन से, शुरूना तो गुजर गया, इसकी सात नजीरें हैं, नंबर एक सलासूना, नंबर दो अरबाऊना, नंबर तीन खमसूना, नंबर चार सितूना, नंबर पांच सबऊना, नंबर छह समानूना और नंबर सात तिसऊना। तो देखो ये सात नजीरें हैं, ये इशरूना के मिसल हैं। तो कहते हैं ऐ नजा इरुहस सबउ, यानी इसकी सात नजीरें जो हैं, नजीर का माना है मिसल, जो इसके साथ इस जैसे कलिमे हैं। वही सलासूना इला तिसईना, और ये सलासूना से लेकर तिसईना तक है। वलैसा इशरूना जमा अशारता, वला सलासूना जमा सलासता। ये सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल ये कि आपने तीन किस्में हमें शुमार करवाई, एक जमा मुजक्कर सालिम, एक उलू और एक इशरूना व अखवातुहा। भई इशरूना को अलग क्यों शुमार किया आपने, ये तो जमा मुजक्कर सालिम में दाखिल हो रहा था, किसमें, जमा मुजक्कर सालिम में दाखिल हो रहा है। कहते हैं नहीं भाई, ये जमा नहीं है, इशरूना जमा नहीं। आपके जहन में होगा शायद ये इशरूना अशारा की जमा है, अगर ये अशारा की जमा होती तो फिर इसका इतलाक 30 पर होना चाहिए था, 30 पर होने, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का क्या माना, एक मुसलमान, और मुस्लिमूना ये कम से कम कितने पर बोला जाएगा, तीन पर, मालूम हो उसको तीन गुना करो फिर उस पर तीन मिकदार हो फिर उस पर बोला जाता है। तो अगर ये इशरूना अशरा की जमा होती तो अशरा कितने को कहते हैं, 10 को, तो उस 10 की तीन मिकदारें करो उसको इशरूना कहना चाहिए था, यानी 30 को, हालांकि ये 30 को तो नहीं कहते, ये तो 20 को कहते हैं। इसी तरह सलासूना, आप ये ना समझना ये सलासा की जमा है, अगर सलासा की जमा होती तो सलासा को तीन गुना करो, कितना बना, 9, तो 9 को भी सलासूना कहना चाहिए था। इसी तरह अरबाऊना को आप अरबाआ की जमा ना समझो, वरना तो अरबाआ को तीन दफा कर दो, कितना बन गया, 12, तो 12 को भी अरबाऊना कहना चाहिए था। इसी तरह खमसूना है, खमसूना को खमसा की जमा ना समझो, वरना तो खमसा को तीन दफा कर दो, कितना बन गया, 15, 15 को भी खमसूना कहना चाहिए था। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलैसा इशरूना जमा अशाराता, और इशरूना जो है वो अशारा की जमा नहीं है। देखो लैसा इशरूना जमा अशाराता, जमा पढ़ा भाई मैंने, मनसूब पढ़ा, क्योंकि ये लैसा की खबर है, और लैसा क्या करता है, अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब, और अशाराता मैंने इसको अशाराता पढ़ा, ये वजह यह कि यह गैर मुनसरिफ है, ये क्या है, गैर, और गैर मुनसरिफ, अगरचे देखो अशरा यहां मुजाफिले बन रहा है लेकिन ये गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आते, इसलिए तनवीन भी नहीं आई और कसरा भी नहीं आया, है ये मजरूर इस वक्त मुजाफिले है। भाई गैर मुनसरिफ क्यों है, क्या वजह है, कौन से दो सबब हैं जे, एक तो तानीस है, ताय तानीस जुड़ी हुई है साथ, दूसरा सबब, हां दूसरा आलम है, अशरा बोलकर अशरा का लफ्ज मुराद है, उसका माना यानी 10 मुराद नहीं है, तो लिहाजा ये गैर मुनसरिफ है। तो कहते हैं लैसा इशरूना जमा अशराता, ये इशरूना जो है वो अशरा की जमा नहीं है। वला सलासूना जमा सलासता, और ना सलासूना जो है वो सलासा की जमा है, यहां भी सलासता गैर मुनसरिफ है, एक सबब क्या तानीस और दूसरा क्या आलमियत। इसी तरह वो जो ऊपर आया था वह इसनानी व इसनतानी व सिंतानी, वो भी गैर मुनसरिफ हैं भाई, दो सबब क्या, एक अलम है, दूसरा सबब अलिफ नून जायदा तान भाई, लिहाजा आप गैर मुनसरिफ वाला इराब भी उस पर पढ़ सकते हैं, व इसनानो व इसनतानो व सिंतानो, बात समझ में आ गई। और आप चाहें तो जैसे इनको लफ्जों में पढ़ा जाता है वहां तो नून पर जेर होता है, तो आप यहां नून पर जेर भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह सही है। तो कहते हैं वलैसा इशरूना जमा अशराता वला सलासूना जमा सलासता, और इशरूना अशरा की जमा नहीं है और न सलासूना सलासा की जमा है।
وَإِلَّا تَصِحُ اِطْلَاقُ عِشْرِينَ عَلَى سَلَاسِينَ, ورنہ صحیح ہوتا عشرینہ کا اطلاق سلاسینہ پر, ورنہ تو عشرونہ کا اطلاق تیس پر بھی ہونا چاہیے تھا, لِأَنَّهُ سَلَاسَةُ مَقَادِيرَ الْعَشَرَةِ, کیونکہ وہ عشرہ کی تین مقداریں ہیں. سلاسینہ تیس جو ہے اس میں کتنے دس ہیں؟ تین دس ہیں, تو اس کو بھی عشرونہ کہنا چاہیے تھا. لِأَنَّهُ سَلَاسَةُ مَقَادِيرَ الْعَشَرَةِ, کیونکہ وہ عشرہ کی وہ دس کی تین مقداریں ہیں. اوپر کیا آیا؟ وَإِلَّا تَصِحُ اِطْلَاقُ عِشْرِينَ عَلَى سَلَاسِينَ, ورنہ تو عشرینہ کا اطلاق سلاسینہ پر صحیح ہوتا. عشرونہ کا اطلاق سلاسینہ پر صحیح ہوتا, اور ہم نے کبھی عربوں سے بھی سنا ہوتا کہ وہ سلاسینہ کو عشرینہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی عربوں سے نہیں سنا. وَإِطْلَاقُ سَلَاسِينَ عَلَى التِّسْعَةِ, اور اس کا عطف پیچھے جو آیا تھا نا اطلاق و عشرینہ, اس پر کریں. اور ورنہ صحیح ہوتا سلاسینہ کا اطلاق تسعہ پر. کتنے پر؟ سلاسینہ کا اطلاق نو پر صحیح ہوتا, اگر یہ سلاسینہ کس کی جمع ہوتی؟ سلاسہ کی, کیونکہ نو سلاسہ سے تین گنا ہے, تو اس کو بھی سلاسینہ کہنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے تسعہ پر سلاسینہ کا اطلاق کیا ہو, نو کو انہوں نے کیا کہا ہو؟ تیس کہا ہو, ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک دفعہ عبارت دیکھ لیں. وَإِلَّا تَصِحُ اِطْلَاقُ عِشْرِينَ عَلَى سَلَاسِينَ لِأَنَّهُ سَلَاسَةُ مَقَادِيرِ الْعَشَرَةِ وَإِطْلَاقُ سَلَاسِينَ عَلَى التِّسْعَةِ لِأَنَّهَا سَلَاسَةُ مَقَادِيرِ السَّلَاسَةِ, ورنہ صحیح ہوتا عشرینہ کا اطلاق سلاسینہ پر, کیونکہ سلاسینہ جو ہے وہ تین مقدار ہے عشرہ سے. اور صحیح ہوتا سلاسینہ کا اطلاق تسعہ پر, لأنہا سلاسۃ مقادیر سلاسطی, کیونکہ نو جو ہے وہ تین مقداریں ہیں سلاسہ کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وعلی ھذا القیاس البواقی, اور باقی بھی اسی قیاس پر ہیں, اسی طریقے پر ہیں, یعنی اربعون اربعہ کی جمع نہیں ہے اور خمسون خمسہ کی جمع نہیں ہے. وایضا ھذه الالفاظ تدل علی معان معینۃ ولا تعین فی الجموع, اور نیز اس لیے بھی دوسری دلیل دے رہے ہیں. پہلی دلیل کیا دی؟ بات یہ کی کہ عشرون عشرہ کی جمع نہیں, اور سلاسونا سلاسہ کی جمع نہیں, ورنہ نو پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہوتا. اور نیز اس لیے بھی کہ یہ جو عدد ہیں یہ جمع نہیں ہے, یہ جمع نہیں ہے, کیونکہ یہ معین عدد پر دلالت کرتے ہیں. عشرونا کا کیا معنی؟ بیس. سلاسونا کا کیا معنی؟ تیس. اربعونا کا کیا معنی؟ چالیس. یہ معین عدد پر دلالت کر رہے ہیں, اور جمع معین عدد پہ دلالت نہیں کرتی. جمع کا اطلاق ہوتا ہے تین سے اوپر کسی بھی عدد پر, تین بھی مراد لے سکتے ہو, چار بھی, پانچ بھی, چھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جمع کا اطلاق کسی معین عدد پہ ہوتا ہے یا تین سے اوپر پر اطلاق ہوتا ہے. تو جمع جو ہے جمع معین عدد پر دلالت نہیں کرتا, جمع معین عدد پر دلالت نہیں کرتا. جمع جب آپ مثلا میں نے کہا رجالن, جمع ہے یا نہیں؟ کتنے رجل مراد ہیں؟ تین, چار, پانچ؟ نہیں, تین بھی لے سکتے ہو, چار بھی, پانچ, سب جمع کے میں کوئی معین عدد نہیں ہوتا. رجال کا معنی کچھ آدمی. تو بات سمجھ میں آ گئی. بات یہ ہوئی تھی کہ عشرونا وغیرہ تو جمع مذکر سالم میں ہی داخل ہو رہے تھے, ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں, یہ جمع نہیں ہے, ان کے آخر میں واو نون آیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جمع ہے. دو وجہ ذکر کی, ایک تو یہ کہ اگر یہ عشرہ کی جمع ہوتی تو پھر تو اس کا اطلاق پھر تیس پر بھی ہونا چاہیے تھا, اور اسی طرح سلاسونا کا اطلاق نو پر ہونا چاہیے تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جمع نہیں ہے, کہ جمع کا اطلاق کسی معین عدد پر نہیں ہوتا بلکہ تین اور تین سے اوپر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور وہ کوئی معین عدد نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے. وَأَيْضًا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُعَيَّنَةٍ, اور نیز یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معین معانی پر, یعنی معین عدد پر. وَلَا تَعْيِينَ فِي الْجُمُوعِ, اور جمعوں میں تعین نہیں ہوتی. بِالْوَاوِ رَفْعًا وَالْيَاءِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا نَصْبًا وَجَرًّا. اب اعراب بتا رہے ہیں کہ یہ جو تینوں گزر گئے کون کون، جمع مذکر سالم اولو اور عشرون و اخواتوها، یہ جو ہیں ان کا اعراب بِالْوَاوِ واو کے ساتھ آئے گا، رَفْعًا حالت رفعی میں، وَالْيَاءِ اور یا کے ساتھ، ایسی یا الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا جس کا ماقبل مکسور ہو، جس کا ماقبل کیا ہو مکسور ہو، نصبا وجرن حالتا نصبی والجری، کس حالت میں؟ نصبی اور جری حالت میں بھائی. تو ان کا اعراب واو کے ساتھ آئے گا حالت رفی میں، اور حالت نصبی جری میں ایسی یا جس کا ماقبل، ایسی یا جس کا ماقبل مکسور، یا مکسور ہوگی یا ماقبل مکسور ہوگا، ماقبل. تو یہ بھی صفت بحال متعلق ہی ہے بھائی، یہ ماقبلہ اس کے لیے فاعل بن رہا ہے. ول یا المکسوری، اور ایسی یا کہ مکسور ہو، ماقبلہ اس یا کا ماقبل، اس کا اعراب آئے گا ایسی یا جس کا ماقبل مکسور ہو، نصبا و جرن حالت نصبی میں اور حالت جری میں بھائی. اچھا چلیے بس کریں، بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.